नमस्कार सुतोच, बड़ा वलेन से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है बजट 2023-24। वार्षिक बजट वित्तीय योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा आगामी वर्ष की प्राप्तियों एवं राजस्व तथा व्यय का अनुमानित निर्धारित किया जाता है, जिससे मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी संतुलन व आर्थिक स्थिति को लेकर बनाया जाता है। आज हमारे साथ में संदीप जी भकने जुड़े हुए, जो पूर्व जनपद सदस्य थे। संदीप जी, मोबाइल में स्वागत सर आपका। सर,
नमस्कार गौतम जी।
2023-24 के बजट को लेकर क्या उम्मीद जताई जा रही है आपके तरफ से, क्या देखते हैं जिलेवासियों के लिए?
जिलेवासी और पूरे देश और प्रदेश के लिए भाजपा ने, सरकार ने, मोदी जी ने जिस तरह से जनता से वादे किए थे, वो वादे पे अभी तक तो खरे उतरते नजर नहीं आए। पर यदि मोबाइल वाणी के माध्यम से मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो उन्होंने जो हमारे देश का और हमारे जिले का किसान जो परेशान है, उस किसान को की परेशानी कुछ कम करना चाहिए। जो खाद, बीज और जितने उपकरण कृषि को से संबंधित है उनको सब्सिडी देना चाहिए, और खाद बीजों पर अच्छे किस्म का बीज और खाद उपलब्ध होना चाहिए, कराना चाहिए। साथ साथ बेरोजगार जो हमारे देश का, प्रदेश का और जिले का परेशान है, चाहे रेलवे की नौकरियां भी उनको भी नहीं मिल रही है, बहुत सारे जगह पे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, तो उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो उसके लिए जो स्किल इंडिया का जो नारा मोदी सरकार ने दिया था, उस स्किल इंडिया पे भी काम करना चाहिए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।
जी सर, क्या देखते हैं महंगाई, पेट्रोल डीजल के द्वारा जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, तो इस बजट के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण होने के लिए क्या उम्मीद जता रहा है इस बजट में?
सबसे बड़ी मार मध्यम वर्गीय के परिवार को है, और हमारे घर की जो गृहिणी है वो सबसे ज्यादा परेशान है। खाने का तेल देख लो, इतना डबल से भी ज्यादा का मूल्य वृद्धि हो गई है। रसोई गैस डबल मूल्य वृद्धि हो गई है। साबुन और जितनी दैनिक उपभोग की वस्तुएं है, हमारे किचन में जो लगने वाली वस्तुएं है, वो सबसे ज्यादा महंगी, डबल से भी ज्यादा महंगी हो गई है। तो हमारा निवेदन था केंद्र सरकार से कि एक हमारी जो फाइनेंस मंत्री है वो भी महिला है, तो वो महिलाओं का ध्यान रखे और रसोई में लगने वाली चीजें, जो खाद्य तेल है, रसोई गैस है, साबुन सोडा है जो कपड़े धोने के लिए, तो कम से कम गृहिणियों को और महिलाओं को तो राहत इस बजट में मिलनी चाहिए।
सर, क्या देखते हैं जिले में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 13,000 से अधिक उज्ज्वला योजना में पात्र हितग्राही को अब तक के राशि, ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरित नहीं हुआ है, इस बजट में क्या उम्मीद लगा रहे हैं सर इसको लेकर, और महंगाई में सिलेंडर के दाम को लेकर भी क्या उम्मीद लगा रहे हैं?
क्या हो रहा है कि हमने एक और उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण और गरीब परिवार को रसोई गैस कनेक्शन तो दे दिया, पर जिस समय हमने रसोई गैस कनेक्शन फ्री में उनको दिया, उस समय गैस सिलेंडर 500 रुपये में और 600 रुपये में आता था। पर वही सिलेंडर यदि आज वो गृहिणी, वो परिवार यदि नया लेने जाती है तो 1100, 1150 रुपये हमको देना पड़ता है। 3 महीने बहुत हो गया, तो किसी के घर में 1 महीना, 1.5 महीना या 3 महीने अधिकतम एक सिलेंडर चलता है। जो कनेक्शन आम उपभोक्ता लेता था उसका 2500 से 3000 रुपया कनेक्शन का चार्जेस होते थे। तो ढाई इनको जो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में कनेक्शन दिए, पर वो सिलेंडर जो 500 और 600 रुपये में मिलता था, आज 1150 रुपये में मिलने लगा। यानी साल भर में आपने उसकी दाम दुगनी करके उन गरीबों से तो पैसा वसूल कर लिया साल भर में, आम उपभोक्ता से भी आप पैसा वसूल कर रहे हैं, और जिस उज्ज्वला योजना के तहत आपने जिसको भी फ्री में दिया उससे जिंदगी भर डबल पैसा वसूल कर रहे हैं। तो ये आपने फ्री में दिया कि आप उस परिवार को लूट मचाई, ये सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो रही है। यदि उज्ज्वला योजना के तहत किसी गरीब परिवार को गैस कनेक्शन फ्री में दिया तो उसको हमेशा लगने वाली गैस भी फ्री में देने चाहिए थी सरकार ने, तब उस परिवार को उस फ्री गैस कनेक्शन से राहत मिलती। पर इस तरह की जो लोक भवन योजनाओं का नाम है, पर जब हम डीप में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जिस तरह से हमारे ऊपर जीएसटी लाई, नोटबंदी करे, ये जो उज्ज्वला गैस जैसी योजनाएं लाए, उसमें हमारे साथ ठगी हो रही है। जीएसटी जो हमारे पे लग रहा था, जो साबुन पहले 20 रुपए की मिलती थी वो 25 रुपए में हो गई, तो आम उपभोक्ता को कहीं भी राहत मिलते नजर नहीं आ रही है, ना तो जीएसटी से, ना उज्ज्वला योजना से, ना किसान की आय दुगनी करने से। किसानों के खाते में 2,000-5,000 तो आ रहे, पर यूरिया की बोरी जो 500 रुपए में, जो डीएपी 500 रुपए की मिलती थी, वो आज हमको 1500 रुपए में मिल रही है। तो कहां से हमको राहत मिल रही है? खाते में हमारे जरूर कैश में 2,000 रुपए दिख रहे हैं कि 6,000 रुपए मोदी सरकार हमको 2,000 रुपए की किस्त में दे रही है, पर साल भर में यदि किसान डीएपी खरीदने जाता है तो 12,000 रुपए उसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, फिर आपके 6,000 की कहां राहत है?
क्या इस बजट के माध्यम से शिक्षा को लेकर हमारे जिले में मेडिकल की जो शिक्षा की सुविधा हो, या फिर उद्यानिकी में कॉलेज हो, या फिर हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में शिक्षा में पीएचडी के छात्र हो, तो इनकी पढ़ाई को लेकर क्या उम्मीद जता रहे इस बजट के माध्यम से?
आपने देखा होगा योगेश जी, 2018 में जब कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, कमलनाथ जी एक दूरगामी और जनहितैषी योजना लाने वाले एक मात्र भारत देश के नेता है। उन्होंने छिंदवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज की का जो एक सपना देखा था, मेडिकल कॉलेज को बनाने के पीछे जो उनकी मंशा थी कि हमारे जिले का और हमारे प्रदेश का जो व्यक्ति जो महाराष्ट्र और नागपुर और बड़े बॉम्बे शहरों में इलाज करने जाते हैं, वो वहां न जाए और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो छिंदवाड़ा में, और यही पे अच्छा हमारे जिले वासियों को इलाज मिले, इसलिए उन्होंने मेडिकल, एक भव्य मेडिकल कॉलेज, एक मॉडल मेडिकल कॉलेज की जो सपना देखा था वो अधूरा रह गया। हार्टिकल्चर का, हार्टिकल्चर के लिए जो हमें बैतूल, जबलपुर और बाहर जाना पड़ता है, हमारे जिले के छात्र यही कृषि कॉलेज, कृषि विद्यालय यहाँ पे खोलने जा रहा था, वहां पे एक कॉलेज के माध्यम से हमारे जिले वासियों के को यही भी शिक्षा मिलती। तो सरकार जाने से वो हमारा सपना जिले का अधूरा रह गया। बजट में मध्य प्रदेश सरकार है, पर बजट में मेडिकल कॉलेज या अन्य जो हमारे यूनिवर्सिटी या कृषि विद्यालय खुलने जा रहा था, उसका कोई प्रावधान, उसके लिए कोई बजट नहीं किया गया है। तो ये भी हमारा निवेदन था कि जिले में कमलनाथ जी की तो सोच थी, पर आम आदमी को भी उससे राहत मिलती, विद्यार्थियों को राहत मिलती। तो निवेदन है कि जिले में जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, उसके लिए बजट में प्रावधान हो, कृषि विद्यालय के लिए बजट में प्रावधान हो, ताकि हमारे जिले के बच्चों को वहां पे उचित व्यवस्था मिल सके।
जी सर, मेरा अंतिम सवाल है, नागपुर छिंदवाड़ा की जो ट्रेनें चल रही है आज, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उसी ट्रेनों से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं शिक्षा को लेकर। सर अभी क्या देखते हैं, इन ट्रेनों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसलिए बजट से क्या उम्मीद रखते हैं सर इसको लेकर?
ट्रेनों में बढ़ोतरी होना चाहिए, साथ ही साथ जो बच्चे बाहर शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, उनको टिकट किराए में रियायत अवश्य मिलना चाहिए। स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ एक संघर्ष का लाइफ होती है, और जो आदमी शिक्षा ग्रहण कर रहा है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो इस देश को उन्नति की ओर इस देश का युवा और छात्र ही लेके जाएगा। इसलिए छात्र जीवन में उसको जितनी ज्यादा सुविधा दी जा सकती है, जितनी ज्यादा रियायत दी जा सकती है, वो देना चाहिए, और बजट में छात्रों के लिए बिल्कुल प्रावधान किया जाना चाहिए।
जी, तो ये थे संदीप जी भकने, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से दो बजट 2023-24 को लेकर अपनी राय दी। संदीप जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद
छिंदवाड़ा योगेश, धन्यवाद।